नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
नमस्कार।
पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन है, स्वर्ग का जीवन कैसे जिएं।
हाँ, बहुत ही गहरा विषय है ये।
हाँ, क्योंकि अक्सर हम स्वर्ग नरक को ना कोई दूर की जगह समझ लेते हैं, मरने के बाद की बात।
बिल्कुल।
पर गुरुदेव कह रहे नहीं, ये तो यही है, इसी जीवन में, हमारे अपने हाथ में है कि हम स्वर्ग में जी रहे या नरक में।
सही कहा, ये पूरी तरह हमारे नजरिए और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है।
तो आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे संभव है।
जरूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं कि मनुष्य को ना ये स्वतंत्रता मिली है, ये चुनाव मिला है कि वो चाहे तो स्वर्ग चुने या नरक।
अच्छा।
हाँ, और दुख का जो मूल कारण है वो अक्सर क्या होता है, हमारी अपनी इच्छाएं, वो भी अतृप्त इच्छाएं, कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं। जैसे मुझे ये मिल जाए, वो पद मिल जाए। बिल्कुल। या बच्चे ऐसे हो जाएं, जीवन साथी ऐसा हो तो हम सुखी होंगे, ऐसा हम सोचते हैं।
हाँ, सोचते तो हैं।
पर ये सब चीजें क्या हैं? ये बाहरी हैं, दूसरों पर निर्भर है, हमारे पूरे कंट्रोल में तो है नहीं।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर दुख होता है, निराशा होती है। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि 60% दुख तो बस इसी दिमागी कश्मकश का है।
60%, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर रास्ता क्या है, कैसे निकले इससे, कैसे वो स्वर्ग वाला अनुभव करें?
हाँ, तो यहीं पर गुरुदेव पहला सूत्र देते हैं, कर्मयोग।
कर्मयोग गीता वाला?
हाँ, पर यहाँ उसका व्यवहारिक पहलू देखिए। इसका मतलब है कि अपनी खुशी को, अपने सुख को बाहरी नतीजों से मत जोड़िए।
अच्छा।
दूसरों के व्यवहार से मत जोड़िए। मतलब मेरा बेटा मेरी सुनेगा तभी मैं खुश होंगी, या मेरे पति ऐसा करेंगे तभी, ऐसा नहीं।
ये मुश्किल लगता है थोड़ा।
है, पर यही साधना है। इसके बजाय अपना पूरा ध्यान किस पर लगाना है? अपने कर्तव्य पर, अपनी जिम्मेदारी पर, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से निभाना
और उसी में संतोष ढूंढना।
एग्जैक्टली। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, बस इसी एहसास में खुशी है, यही संतोष है। परिणाम क्या होगा वो छोड़ दो। ये है कर्मयोग का सार।
वाह, ये तो सच में चिंता मुक्ति का मार्ग है। अच्छा, और दूसरा सूत्र क्या है?
दूसरा सूत्र जुड़ा है देवता के स्वभाव से। स्वर्ग में कौन रहते हैं?
देवता।
हाँ, उनका स्वभाव क्या है? गुरुदेव कहते हैं देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट कर खाते हैं।
मिल बांट कर खाना, इसका मतलब?
इसका गहरा मतलब है, आपके पास जो भी है, ज्ञान है, पैसा है, सेहत है, समय है, कोई हुनर है,
कुछ भी।
हाँ, कुछ भी, उसे सिर्फ अपने लिए मत रखिए, दूसरों की भलाई में लगाइए। किसी की मुश्किल है तो मदद कीजिए, किसी को आगे बढ़ने में सहारा दीजिए।
अच्छा, मतलब अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करना।
हाँ, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है, सारी धरती एक परिवार है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सब में अपने आप को देखना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जीने का तरीका है। अपने छोटे से मैं के घेरे को तोड़ना, उसे बड़ा करना, समाज तक, दुनिया तक फैलाना।
ये तो बहुत ऊंची बात है, मतलब कर्म योग से अंदरूनी शांति और बांटने से बाहरी जुड़ाव।
बिल्कुल।
लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता कभी असफलता, उसे कैसे ले?
हाँ, ये भी बड़ा सवाल है, और इसके लिए गुरुदेव एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। खिलाड़ी की तरह जियो।
खिलाड़ी की तरह मतलब?
जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरता है, वो जीतने की पूरी कोशिश करता है, अपना बेस्ट देता है।
हाँ।
पर वो ये भी जानता है कि हार भी हो सकती है, तो जीत गया तो बहुत अहंकार नहीं, हार गया तो एकदम टूट नहीं गया, चेहरे पे शिकन नहीं।
सहज भाव से।
हाँ, सहजता से परिणाम को स्वीकार करना, और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता, हाय क्या होगा, कैसे होगा, इस डर में नहीं घुलना, निश्चिंत रहना, निर्द्वंद्व रहना।
ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करना शायद आसान ना हो।
आसान तो नहीं है, पर अभ्यास इसी का करना है, और इसी से जुड़ा है वर्तमान पर ध्यान देना,
प्रेजेंट मोमेंट में जीना।
हाँ, गुरुदेव कहते हैं भूतकाल से सबक लो, भविष्य की प्लानिंग करो, पर जियो अभी, इसी पल में। आज का दिन मेरे हाथ में है, इससे मैं सबसे अच्छा कैसे बना सकता हूँ, ये सोच रखो।
ये बात तो सही है। अच्छा, और जीवन में जो नकारात्मकता आती है, बुरे लोग मिलते हैं, बुराइयां दिखती हैं, उनसे कैसे निपटे?
ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, बुराई से, दुष्टता से सामना तो होगा, गुरुदेव कहते हैं उससे संघर्ष भी करना है, पर बिना द्वेष के, बिना ईर्ष्या के, बिना बदले की भावना के।
क्यों, ऐसा क्यों?
क्योंकि ये जो नफरत है, गुस्सा है, बदला लेने की इच्छा है, ये सबसे पहले किसे जलाती है?
हमें खुद को।
बिल्कुल, ये हमारे अंदर ही आग लगा देती है। तो गुरुदेव डॉक्टर का उदाहरण देते हैं, डॉक्टर किससे लड़ता है, बीमारी से या बीमार से?
बीमारी से,
है ना। बीमार को तो वो बचाना चाहता है, बीमारी को खत्म करना चाहता है। वैसे ही हमें व्यक्ति से नहीं, उसकी बुराई से, उसकी गलत आदत से लड़ना है, सुधार की कोशिश करनी है।
वाह, ये दृष्टिकोण तो बिल्कुल अलग है। मतलब लड़ना भी है पर बिना नफरत के।
हाँ, और इसी सोच से जुड़ी है आत्मनिर्भरता,
सेल्फ डिपेंडेंस।
हाँ, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए मुख्य रूप से खुद पर भरोसा रखो। दूसरों से मदद लो, सहयोग लो, वो ठीक है, पर पूरी तरह उन पर आश्रित मत हो जाओ,
वरना निराशा होती है जब उम्मीदें टूटती हैं।
हाँ, खीज होती है। कहावत भी है ना, आज बिरानी जो करे जियत ही मर जाए। तो आत्मनिर्भरता एक मजबूती देती है, और इसके साथ ही अपनाना है विध्यात्मक चिंतन,
पॉजिटिव थिंकिंग।
हाँ, पर सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने तक सीमित नहीं। इसका मतलब है, जो नहीं है उसका रोना मत रो, जो मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला, बुद्धि मिली, जो भी साधन है,
हाँ उस पे ध्यान देना,
उस पे ध्यान दो, उसे देखो। शिकायत करने के बजाय ये सोचो कि मैं क्या बना सकता हूँ, क्या सुधार सकता हूँ। निर्माण की सोचो, विनाश की नहीं।
और दूसरों को भी प्यार, सम्मान, प्रोत्साहन देना,
बिल्कुल, ये भी तो विध्यात्मकता है। किसी की आलोचना करने के बजाय उसे प्रेरित करना, ये माहौल को कितना सकारात्मक बना देता है। यही तो स्वर्ग है।
सही बात है।
तो असल में गुरुदेव इन सब सूत्रों को मिलाकर एक पूरी जीवन शैली बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें ब्राह्मण और संत, इन दोनों का मिला जुला जीवन जीना चाहिए।
ब्राह्मण और संत,
वो कैसे? ब्राह्मण मतलब ज्ञानवान, कम खर्च करने वाला यानी मितव्ययी, संतोषी, और अपरिग्रही मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करने वाला। और संत मतलब परोपकारी, समाज की सेवा करने वाला, दूसरों के दुख में हाथ बटाने वाला।
अच्छा, तो ज्ञान और सेवा का संगम।
हाँ, ये रास्ता शायद दुनिया की भीड़ से अलग लगे, जैसे नदी की धारा के उल्टा तैरना, पर आदर्शों का रास्ता तो अक्सर ऐसा ही होता है।
हाँ, ये तो है।
मूल मंत्र क्या है? जियो और जीने दो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, हंसते हंसाते जियो, सहयोग करो, यही तो धरती पर स्वर्ग बनाना है।
तो सार ये निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार स्वर्ग कोई दूसरी दुनिया नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
वो यही है इसी जीवन में, और इसे हम खुद बना सकते हैं अपने कर्मयोग से, अपनी उदारता से, अपनी पॉजिटिव सोच से, आत्मनिर्भरता से और समत्व बुद्धि से, मतलब सुख दुख में एक जैसा भाव रखना।
हाँ।
ये किस्मत की बात नहीं है, ये हमारे अपने चुनाव और हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे उद्बोधन का निचोड़, एसेंस यही है कि अगर हम अपने देखने के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में और अपने काम करने के तरीके में ये बुनियादी बदलाव ले आए, तो हम जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहीं स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं।
सचमुच, ये तो जीवन बदलने वाली बात है।
हाँ, तो श्रोताओं के लिए मैं एक विचार छोड़ जाते हैं।
जरूर।
पूज्य गुरुदेव ने जो ये रास्ते बताए हैं
जी,
इन पर चलते हुए उस देवत्व की ओर, उस स्वर्ग वाली अवस्था की ओर, आज अपनी रोज की जिंदगी में हम कौन सा एक छोटा सा, बस एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं,
ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा। ओम शांति।